Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhatram Karne Vishnuyama Devaha भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागुंसत्तनूभिः यशेम देवहि तञ्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
मन्त्र छे माण्डुक्योपनिषत्
एष सर्वेश्वरः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एषोऽन्तर्यामी एष योनिः एष योनिः सर्वस्य सर्वस्य प्रभवाप्ययौ प्रभवाप्ययौ हि भूतानां हि भूतानां हि भूतानां
अब क्या निर्णय है हमारा बाहर ढूंढत जन्म गवाया हाथ में कछु न आए फिर फिर दूबट फिर फिर निकसत मगर मौत फिर खाए प्यारे हाँ अंदर गोता लगाओ प्यारे रंग अवधूत जी का ये भजन है इस भव सागर में है एक बंगला तीन खम्भ दस द्वार सूक्ष्म दसम नित बंद रहे वो खोले बिरला यार प्यारे अंदर गोता लगाओ प्यारे बहुत सुंदर भजन है सूक्ष्म दशम जो सूक्ष्म बुद्धि से ही प्राप्त किया जाता है ये परमात्मा देखिए पुरुषार्थ यहाँ करना है और कुछ हमारे काम की चीज होती है तो वो कभी कोई हमें पूछ लेता है कोई बातचीत हो जाती है तो वो सबके काम में आ जाती है कल किसी के साथ बात हो रही थी कि भाई सब जगह ब्रह्म है वो तो हम मान सकते हैं पर मैं ब्रह्म हूं इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन तो हम कर सकते हैं देखिए सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जो हम करते हैं ना उसके कई कारण है और उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता परब्रह्म की प्राप्ति में अगर सर्वत्र ब्रह्म है ऐसा हम मानने लगे तो वो पुरुषार्थ नहीं है वो क्या है भाई बचपन से संस्कार आते हैं, किसी को पूजा करते देखा और हमने भी मान लिया कि माता पिता जिसे सर्वज्ञ कहते हैं, माता कहती है भाई परमात्मा सब जगह है बेटा, तेरी रक्षा होगी, तू जहां भी जाएगा, तो मैंने मान लिया कि सर्वज्ञ ब्रह्म है। तो सर्वज्ञ ब्रह्म जब कोई गुरु शास्त्र से जाना गया तो उसमें मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। श्रद्धा से माना, अच्छा डर से माना, दुख आ गया तो मान लिया, कोई है सहारा है, तो ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वृत्ति सर्वत्र ब्रह्म मान लिया, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ऐसे क्यों नहीं मानी जाती है? इतना सुगम और सरल क्यों नहीं है? आप ये पत्थर में कहेंगे परमात्मा है तो हम मानने को तैयार है और हमने मान ही लिया है। हम हिमालय को परमात्मा मानते ही है, गंगा नदी को परमात्मा मानते ही है। आश्चर्य तो देखिए, कोई हिलता डुलता है, कोई चलने फिरने वाला है, बोलने वाला संगात है, ये तो जादू है, करिश्मा है, तो उसको ब्रह्म नहीं मान सकते। और वही परमात्मा ने जब कहा सावरणम तो हिमालय, तो हम दौड़ पड़े गंगा जी में, दौड़ पड़े तुलसी पत्र में, हम मानने लगे परमात्मा वहां है तो यहां भी मानिए, ऐसा कहना है। वहां मानने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, यहां भीतर जो परमात्मा है, हम ब्रह्मास्मि की वृत्ति अगर लानी है तो पुरुषार्थ शुरू करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ यहां है। कहां कि भाई क्या पुरुषार्थ हमें करना है? तो जागृत में वो परमात्मा किस प्रकार घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, अब वो दृष्टांत तो आपको याद ही रहना चाहिए। हाँ, आपके घर में हम आते हैं तो कितने लोग हैं उधर? 19 है, वेरी गुड। बस इतना भी याद रखा, हमारा सफल हो गया भरोसे आना। 19 लोग है हाँ, और कोई एक भी पूछता नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो भाई ऐसे ही वो जागृत में वो जो परमात्मा छिपा है उसे अन्वेष्टव्य, अन्वेषण वहां करना है। वैसे स्वप्न में सुषुप्ति में ये आपने पुरुषार्थ किया, और ये बौद्धिक पुरुषार्थ है, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि का विषय परमात्मा को कहा है। ठीक है, तो ये जो पुरुषार्थ आपने कर लिया है, इसी से अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे तत्क्षण उसे उत्पन्न होना ही पड़ेगा। तो अन्वेषण का ये जो विषय इतने दिनों से हम कर रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, तो ढूंढना क्या है? भाई सरल है, कोई ऐसा है ये परमात्मा। जागृत अवस्था में अन्वेषण क्या करना है कि समथिंग अदर देन जागृत अवस्था, कोई ऐसा जागृत अवस्था में परमात्मा छिपा हुआ है जो जागृत अवस्था नहीं है, जो जागृत अवस्था के जितने भी पदार्थ हैं उसके नियम उसके गुण वो कुछ है उसमें नहीं है। जागृत अवस्था में कोई एक फैक्टर, कोई एक ऐसा शक्ति, कोई एक स्रोत ऐसा आपको ढूंढना है जो जागृत अवस्था नहीं है, फिर भी जागृत अवस्था में वो है ही। तो भाई जागृत अवस्था कैसी है? तो भाई जागृत अवस्था यानी क्या? तो वो आपको बता दिया है कि जिसमें सप्त अंग होते हैं। तो सप्त अंग जो है वो परमात्मा नहीं है। फिर जिसके 19 मुख होते हैं तो बोले वो भी नहीं है, ये इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया, क्योंकि वो भी नाम और रूप वाली है, स्थूल है। स्थूल दर्शन यानी जागृत अवस्था। अब ये जागृत अवस्था के स्थूल दर्शन में कोई ऐसा ढूंढना है जो अस्थूलम हो, अपाणिपाद हो, हाथ और पैर बिना हो, अदृश्य हो, तो भाई वो कौन है? तो बोले मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, आंखों जिस आंख जिस शक्ति से देख रही है, और देख रही है इतना ही नहीं, आप शक्ति नहीं देख सकेंगे, वहां तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। भाई कौन सी शक्ति से ये रूमाल को देखना इतना फास्ट होता है कि पता नहीं लगता कि कोई शक्ति यहां काम कर गई। हमें क्या लगता है कि इट इज बट नेचुरल, ये तो साइंस का नियम है, आप क्या हमें सिखा रही है झूठा मूठा कि यहाँ कोई शक्ति है और ये कोई देख रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं, पर ये रूमाल है ऐसा वहां से मैसेज जो यहाँ रजिस्टर हुआ और आपके ज्ञान में जो वृद्धि हुई वो ज्ञान कैसा है? रूमाल भीतर गया या रूमाल का ज्ञान भीतर गया? रूमाल का ज्ञान वृत्ति भीतर गई ना, तो वृत्ति का आकार क्या है भाई? तो बोले आकार नहीं है। वृत्ति के हाथ पैर है, कैसे दौड़ी वो वृत्ति? तो बोले हाथ पैर नहीं है। तो यहाँ ये जागृत अवस्था में कोई ऐसा है जो अदृश्य है, कोई ऐसा है जो उसके हाथ पैर नहीं है, कोई ऐसा है जिससे मुझे ज्ञान हो रहा है, तो दिस इज अदर देन जागृत अवस्था, वो परमात्मा है जागृत का। अच्छा, अब स्वप्न में भी ऐसा ही कुछ है। स्वप्न अवस्था में ये परमात्मा का अन्वेषण करना है तो स्वप्न अवस्था में कुछ ऐसा ढूंढना है जो स्वप्न से अलग हो, जो स्वप्न से को रिलेट नहीं होता हो, इक्वल टू नहीं होता हो, तो भाई स्वप्न में क्या है? तो स्वप्न में सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म में सूक्ष्म पदार्थ है और कर्म भी है। हाँ भाई, वहाँ कर्म भी है, सुख और दुख है। तो वहाँ क्या है जो नहीं दिखाई पड़ता, जो नहीं जाना पड़ता? तो बोले कि स्वप्न आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? स्वप्न अवस्था में प्रकाश है या नहीं, आप देख रहे हैं ना? स्वप्न अवस्था अनुभव कर रहे हैं ना? वो प्रकाश के कितना क्या शेप है? हा? वो प्रकाश में क्या कर्म हो रहा है? प्रकाश क्या कर्म कर रहा है? प्रकाश लाने के लिए क्या कर्म हुआ? तो वहाँ एक चीज ऐसी है जिसको लाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न सृष्टि के लिए कर्म की आवश्यकता है। कौन से कर्म की? हमारे प्रारब्ध कर्म की। हाँ, जो स्वप्न सृष्टि में निकलते हैं, पर ये स्वप्न सृष्टि जिस प्रकाश में दिखाई पड़ती है भाई, वो कोई इच्छा से नहीं। रात को सोते वक्त आपने ऐसा कहा कि भाई वासना जो है वो स्वप्न अवस्था में वासना अब चलने वाली है, तो हे परमात्मा वहाँ कुछ प्रकाश दे देना, ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है? नहीं, इच्छा भी नहीं करती है, याद भी नहीं करना पड़ता है। वो वहाँ है ही, इल्यूमिनेशन है ही, जिससे स्वप्न जाना गया। जो आपके भीतर शक्ति है, सुबह उठ के आप कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, वो स्वप्न देखा किसने और याद किसने रखा? दी मेमोरी, दी रिमेम्बरेंस, वो कौन है? तो बोले वो सूक्ष्म परमात्मा है। हाँ, स्वप्न में अभी वो जो परमात्मा स्वप्न में जो सूक्ष्म देख लिया ना, उसका भी नाम नहीं है, उसका भी आकार नहीं है। वो प्रकाश को बुलाना नहीं पड़ता है, प्रकाश का नाश भी नहीं होता है, वैसा ही साक्षी रहता है। बस ऐसे ही ये जो है साक्षी परमात्मा स्वप्न अवस्था का, वो जागृत के जो परमात्मा को हमने अन्वेषण करके अलग कर दिया, उससे मैच होना चाहिए। तो भाई जागृत में वो परमात्मा कैसे थे? तो कुछ ऐसा ही रूप था, कोई विशेष प्रयत्न नहीं था, वहाँ सिर्फ एक ज्ञान की ही वृत्ति चल रही थी। स्वप्न में वही ज्ञान की वृत्ति ने क्या कहा कि भाई सूक्ष्म भोग किया, तो सब अवस्था टैली हो रही है, ये सूक्ष्म है, ये अदृश्य है। अब सुषुप्ति में कुछ ऐसा ढूंढना है जो सुषुप्ति से अलग हो, जो सुषुप्ति का भाग नहीं हो और सुषुप्ति में चल रहा हो। ठीक है, तो सुषुप्ति यानी क्या? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई कर्म नहीं है। तो सुषुप्ति अवस्था जो है और कर्म नहीं है, तो अकर्म अवस्था तो आत्मा की टैली हो गई, ऐसा कुछ अलग क्या है? ठीक है, वहाँ कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, वहाँ कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। सुषुप्ति अवस्था जो है वो आत्म तत्व के वर्णन के बहुत करीब है, और ये अवस्था में वो परमात्मा को अदर देन सुषुप्ति अलग निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र से समझना पड़ता है कि सुषुप्ति में हो क्या रहा है। कल हमने समझ लिया जो आनंद हुक की बात की, तो सुषुप्ति अवस्था में क्या है? स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ, जैसे अंधेरे में पूरे शरीर के ये सब भाग जो है वो दिख नहीं रहे हैं, एकीभूत हो जाते हैं, इसी प्रकार ये प्रचुर जो अज्ञान है वो अज्ञान में स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ एकीभूत हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सुषुप्ति अवस्था में जब हम सो जाते हैं, तो ये प्रचुर अज्ञान जो है, प्रचुर जो अभावात्मक अवस्था है, वो अभावात्मक अवस्था आपने पैदा की है? जागृत में तो आपने कर्म किए, बोले मैंने किया, मैंने भुगता। स्वप्न में भी आप कर्म करते, स्वप्न सृष्टि मैंने रची। ये सुषुप्ति का जो अंधेरा है, सुषुप्ति में जो एकीभूत करने वाला जो तत्व है, हाँ, दैट फोर्स, उसका क्या शेप है, क्या रंग है, क्या रूप है? उसको लाने के लिए आपने क्या किया? कितने मंत्र जप किए कि सुषुप्ति आई? अरे ज्यादा मंत्र जप करेंगे तो सुषुप्ति नहीं आएगी, आप ज्यादा जागृत रहेंगे। हाँ, ठीक है, क्या किया? वो एकीभूत होने कौन करता है, कौन देता है सहारा? देखिए, एकीभूत करने के लिए अवकाश चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर पांच चीजें मेरे पास है, पांच प्रकार के रंग वाला पानी मेरे पास है, और एक पात्र है मेरे पास, वो पात्र भी पानी से भरा है, और ये पांच प्रकार के रंग है, अब मैं उसमें डाल सकती हूँ क्या? ये पात्र क्या चाहिए? ये पांच रंग को मिलाने के लिए जो पात्र मुझे दिया जाता है वो खाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में सब जो सूक्ष्म और स्थूल भोग है वो एकीभूत किसी में जा रहे हैं तो मिक्स होने के लिए, तिरोभूत होने के लिए, एकीभूत होने का अवकाश कौन दे रहा है? वो अवकाश आपने क्रिएट किया? वो अवकाश सुषुप्ति अवस्था है? नहीं, सुषुप्ति अवस्था यानी अभावात्मक ज्ञान कि मैं कुछ नहीं जान रही हूं, पर मैं कुछ नहीं जान रही हूं उसका कारण जो बन रहा है एकीभूत का कारण वो परमात्मा है। वो कैसा है? वहां भी वो दिख नहीं रहा है, वहां भी उसके एट्रीब्यूट क्या है भाई? अदृश्य है, अपाणिपाद है, अचक्षु श्रोत्रम है। वो अवस्था आती नहीं है, जाती नहीं है, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में कुछ ऐसा मैंने अन्वेषण किया, कुछ ऐसा मैंने देखा, कुछ ऐसा मैंने जाना जो ये तीन अवस्थाओं से पर है, फिर भी उसमें है, उसे चौथा कुछ बोलते हैं, उसे तुरीय बोलते हैं। देखिए, आत्मा पूर्णतया अनिर्देशीय है। नाम और रूप का, नाम और वाणी का वहां, वाणी और मन का वहां कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए उपनिषद ने भी क्या कहा? चौथा तुरीय यानी फोर्थ वन जो बच जाता है तदेको अवशिष्ट। तो जब हम निधिध्यासन करते हैं, बैठते हैं आंखें बंद करके, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम, तो भाई जागृत अवस्था में क्या करना है? जागृत अवस्था में जो मन है वो मैं नहीं हूँ। अन्वेषण क्या करना चाहिए? मैं क्या नहीं हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपका प्रयत्न ऐसा ही रहेगा कि जागृत में कोई ऐसा है जो जागृत से अदर देन है, कोई जागृत से अलग है। तो वो क्या है? वो बैठा निधिध्यासन दे दिया है शंकराचार्य जी ने। क्या हा, जागृत में क्या क्या सोचना है, जो सोचने से जो बिना जागृत अवस्था का है वो मिल जाएगा। तो बोले, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार ना हम, भोक्ता नहीं हूँ, भोग्य नहीं हूँ। ठीक है, ये पूरा आपका जो आत्मास्तक है वो आ गया। और क्या नहीं हूँ? भाई जागृत में जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम, ये करने के पीछे जो हार दे वो क्या है कि ऐसा करके जागृत में जो बच जाता है इसके सिवा का उसको मुझे पकड़ना है, अवशिष्ट जो रह जाता है उसे पकड़ना है। अब उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये क्या मुखपाठ हो गया? जाति नीति कुल गोत्र दूरगम पर क्या किसका? ये जागृत अवस्था में जाति नहीं है, कुल नहीं है, गोत्र नहीं है, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तियत, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म अहम अस्मि इति भाव, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। कैसा है? जिसकी जाति नहीं है। तो जागृत में जाति किसकी नहीं है? भाई ये शरीर मन बुद्धि, शरीर का संघात है, उसकी तो जाति है, नीति है, सब कुछ है, पर रह कौन जाता है? ये कौन कह रहा है कि तेरी जाति नहीं है, कुल नहीं है, गोत्र नहीं है? तो बोले, मैं कह रहे हूँ ये कि मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं की जाति क्या है? आप कोई मंदिर में गए और आपको पूछा वो पुरोहित ने, ब्राह्मण ने, कोई कर्मकांड क्रिया करानी है, तो भाई आपका गोत्र क्या? तो बोले, मैं। जाति क्या? तो मैं। जन्म कहाँ हुआ? तो मैं। ऐसा क्या जवाब होगा क्या? गोत्र यानी गोत्र वशिष्ठ गोत्र छांदो के गोत्र, वो सब बताना पड़ेगा आपको। तो मैं की कौन सी जाति है? अब पूरा उल्टा लगाओ। अब वो टेस्टेड की बात याद है ना, वो थप्पा। अब टेस्ट कीजिए कि ये अवशिष्ट मैं रह गया, अब मैं की कोई जाति है? पूरा उल्टा निधिध्यासन अब कीजिए कि ये मैं के ऊपर लगाइए जाति। तो बोले, नहीं है, जाति शरीर की है। कुल, तो मैं ऊपर कुल नहीं लग सकता, नीति नहीं लग सकती, शुकन अपशकन नहीं लग सकते, देश काल नहीं लग सकता। ठीक है, रूप है मैं का? बोले, रूप तो ये शरीर का है, मैं का रूप नहीं है, विकार मैं नहीं होते, मैं बड़ा छोटा नहीं होता। तो पूरा निधिध्यासन ये अवशिष्ट रहा हुआ जागृत अवस्था का जो परमात्मा है उसके ऊपर आपने ये निधिध्यासन किया। ये निधिध्यासन की नींव ये होनी चाहिए आपकी कि ये जो अवशिष्ट रह गया परमात्मा है उसका ही अन्वेषण करना है। पर कैसे? जिसे शास्त्र में बताया है, जिसका गान हमने ये सुबह किया कि ये जो पूरे पांच श्लोक हमने इतने दिनों से किए, अभी उसका जो रस है, जो मधु है, वो मधु यहाँ दे रहे हैं कि वो जो अवशिष्ट रहा हुआ परमा, ये इतना आपको पूर्व भूमिका क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि अब आपको आपके भीतर वो अन्वेषण किया हुआ जो परमात्मा है, जो चौथा है, वो चौथा कैसा है, वो जब आप समझेंगे तब लगेगा कि आप ऐसे हैं, कोई परमात्मा नहीं, आप ऐसे हैं। तो वो आप कैसे हैं? आपके भीतर रहा वो चौथा पुरुष है, वो जो परमात्मा है वो कैसा है? तो बोले, एष सर्वेश्वरः। और दूसरी बात, जागृत अवस्था का अंत है स्वप्न में, स्वप्न अवस्था का अंत है सुषुप्ति में, ये अवस्थाएं आती जाती रहती है, वो जो तत्व जो है कॉन्स्टेंट फैक्टर जो है वो आता जाता नहीं है, वो निरंतर रहता है, वो जो मेरा रहना जो है, मेरा नैरंतर्यम जो है वही वो परमात्मा है और वो निरंतर रहता है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहा, ऐसा सर्वेश्वर, ओहो वो तो सबका ईश्वर है। किसका ईश्वर है भाई, पूरे सावर जंगम जो पदार्थ है उसका ईश्वर है, इतना ही नहीं ये शरीर मन बुद्धि का जो संगात है उसका भी ईश्वर है, इतना ही नहीं उसकी तीन अवस्था है उसका भी वो ईश्वर है, तीनों अवस्था का साक्षात भी वो ईश्वर है। अपनी मर्जी से हम जाग सो नहीं सकते, अपनी मर्जी लगती है क्या, हाँ पूरी जड़ अवस्थाएं है ये तीनों, तो भी हमारी मर्जी नहीं लगती, हमारी मर्जी से ये अवस्थाएं भी नहीं हिल डुल सकती, तो अवस्था के भीतर रहे कर्म हमारे कैसे हो सकते हैं, हमारी इच्छा से कैसे चल सकते हैं, और वहां हम खींच तान के वो भगवान को बोलते हैं तू बैठ जा भाई मुझे करने दे, अब कहाँ जाएंगे कैसे हम सुख पाएंगे। वो कर रहा है, अरे कोई हमारे लिए कर रहा है तो चैन से बैठिए, खुद दौड़ के थकने की क्या बात है, फिर थक के फिर उसी के पास जाना है तो बोले मैं तो कर ही रहा था, हाँ वो तो कर ही रहा है, पूरी अवस्था जो घुमा फिरा रहा है, ताकत नहीं है हमारी कि हम सो सके, जब इच्छा हो अभी सो जाओ चलो, हाँ और आप आधी रात को सोते हैं तो आपकी ताकत नहीं है कि 2 बजे मैं आपके भगवान भी आपको आके बोल सके कि भाई चलो प्रवचन सुनो उठ जाओ, नहीं उठ सकते, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, हाँ वो भी हमारे हाथ में, अभी तीन अवस्थाएं आपके हाथ में नहीं है तो अवस्थाओं के कर्म कहां से हमारे हाथ में आए, हाँ इतना भी समझ ले तो ठीक है। तो बोले कि ऐसे सर्वेश्वर, ये तो सर्व का ईश्वर है, अधिदैव सहित सकल भेद समूह का शास्ता है। शंकराचार्य जी बताते हैं अधिदैव सहित सकल भेद समूह का ये शास्ता है, एष सर्वज्ञ ये सब कुछ जानने वाला है। देखिए शासन तो कोई और करता है, यहाँ हमारे भी जो देश की जो व्यवस्था है शासन करने वाले और है, पर शासन के ऊपर भी कोई ऊपरी होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो बोले कि यही शास्ता जो है वही शासक है, ये दोनों का भेद नहीं है, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है और वही शासन कर रहा है, जो सर्वज्ञ है वही शासन कर सकता है। ऐसा अंतर्यामी, ये कैसा है, ये कहाँ रहा है, तो ये अंतर्यामी है, अंतर्यामी यानी अहम प्रत्यय से तीनों अवस्था में अनुस्यूत ये परमात्मा है। ऐसा योनि ही समस्त जीवों की सर्वस्य प्रभव अप्यय ही भूतानाम, समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण भी है। तैतरीय उपनिषद में जिसके बारे में बताया है, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति इति, वहां जब ब्रह्म प्राप्ति की बात आती है, भृगु और अरुणिका जब संवाद आता है तो वहां की प्रक्रिया इस प्रकार ही चलती है, पर वहां थोड़ी आख्यायिका थोड़ा ड्रामेटाइजेशन ज्यादा किया है। वहाँ क्या किया है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न को ही ब्रह्म मानो, प्राण को ही जागृत अवस्था में जैसे ब्रह्म को हमने ले लिया, मन को ब्रह्म मानो, बुद्धि को ब्रह्म मानो, विज्ञान आनंद को ब्रह्म मानो, ये सब को ब्रह्म मानो, यानी क्या कि अन्नमय कोष में ये अस्थि भांति प्रिय जो है वो जो रूप है ब्रह्म का उसे जान लो, अन्नमय कोष में जो रहने वाला है स्थिर, अन्नमय कोष में रहने वाला कौन है भाई, मैं अन्नमय कोष हूँ, वो जो जानने वाला जो है, जो ज्ञाता है अन्नमय कोष का वो रहता है, और आप जानते हैं कि आपका शरीर है कि नहीं, ये बहुत सरल बातें हैं, आप जानते हैं कि आपका शरीर है कि नहीं, बोले हाँ मैं जानता हूँ, तो जिसका शरीर है, शरीर किसका है, तो बोले मेरा शरीर, और जानने वाला कोई और है क्या, नहीं, अब अगर आपका शरीर है जानने वाले आप कोई और नहीं है, तो लगता है कि परमात्मा शासक है और सर्वज्ञ उसे जानने वाला कोई और होगा, आप कौन हो गए, और परमात्मा की डेफिनेशन क्या है कि सबका ईश्वर सब में है और सबको जानने वाला है, तो ये दो एट्रीब्यूट क्या हो गए, ईशन करने वाला और जानने वाला फैकल्टी सिर्फ परमात्मा की होती है। और देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि परमात्मा के जो गुण है वो अद्वैत के गुण है, वो दो द्वैत वाले नहीं हो सकते। उसके हैं तो उसी के रहेंगे, ये मोनोपोली कहते हैं ना, वो उसी की रहेगी। अगर परमात्मा सर्वज्ञ है, जानना वो परमात्मा का गुण है, जानना वो परमात्मा का एट्रीब्यूट है, और आप कुछ भी अगर जान सकेंगे ना तो वो आप परमात्मा का ही अंश है और नहीं हो सकता और कुछ भी। दे कैनॉट बी अनदर वन। आपको परमात्मा की तरह जानो या न परमात्मा की तरह जानो, पुण्यशाली जानो या पापी जानो, जानना जो है, जानने की जो फैकल्टी है वो परमात्मा के अलावा किसी की भी नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि ये मेरा शरीर है और मैं जान रहा हूँ, तो आप कौन हो गए? शरीर को अस्तित्व देने वाले सत हो गए, शरीर को जानने वाले आप सत्यम ज्ञानम हो गए। और ये शरीर मरता है, शरीर के विकारों को देख सकते हैं, शरीर के परिवर्तन को देख सकते हैं कि ये शरीर जन्मा अपक्षीयते, ये रोगिष्ट हो रहा है, ये अब जाने वाला है, तो शरीर से अलग आप उसको देख सकते हैं, आपका अंत नहीं है, आप वो अनंतम हो गए। तो ये सत्य ज्ञान अनंत के जो गुण है वो आपके भीतर जो है, तो आप परमात्मा ही हो और दूसरा कुछ भी नहीं हो सकते। ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा को जान के, समष्टि परमात्मा को जान के, ये भीतर का जो व्यष्टि परमात्मा है उसका अन्वेषण इस प्रकार किया जाता है। किस किस आधार पे किया जाता है? कि भाई परमात्मा के जो ये गुण है, ज्ञप्ति जो है, ज्ञान की वृत्ति जो है, ज्ञान परमात्मा में चेतन में ही घट सकता है, ज्ञान जड़ में नहीं घट सकता। शरीर मन बुद्धि का पूरा संघात जड़ है, तो उसमें जो कुछ भी ज्ञान है, मैं अज्ञानी को ऐसा कहेगा ना कि भाई मुझे ये बड़ी बड़ी शास्त्र की बातों से मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो भी ठीक है, ये नहीं जानता हूँ, ये जो जानने वाला, कुछ भी जानने वाला जो आपके भीतर है वही परमात्मा है, बस उसी को आपको जानना है, वो जानने का ही पुरुषार्थ आपको करना है। वो जान लिया तो आप ये परमात्मा हो गए। ये ऐक्य यहाँ तक कर दो, ये समष्टि का जो श्लोक समझाया जाता है आपकी दृष्टि से वहाँ ऐक्य कर दीजिए, तो ही अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति जो है वो आपके भीतर हो सकेगी। ऐसा अंतर्यामी, ये सब कुछ जानता है, अंतर में स्थित है। अंतर्यामी कहा है? ईश्वर सर्वभूतानाम रुद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ये अंतर्यामी है। उपनिषद में कहा है ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। भीतर हृदय गुहा में ये स्थित है। प्रभवा अप्यय, उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारण है वो परमात्मा है। अब इसका प्रूफ मुझे दे दीजिए कि भाई आपने कहा सर्वज्ञ है, तो मेरे भीतर जो जानने की ज्ञप्ति हम मान गए कि मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा भी मैं जानती हूँ, तो जानना परमात्मा हुआ, मैं ये मान लेती हूँ। पर यहाँ तो उत्पत्ति स्थिति का कारण भी वो परमात्मा है भाई, उसके जैसी उत्पत्ति स्थिति हम कैसे कर सकते हैं? अरे क्षण क्षण में उत्पत्ति स्थिति और लय हो रही है हमारी, ये पूरी जागृत अवस्था किस में उत्पन्न हुई? हमारे बाजू वाले में रूम जागा, कौन जागा? आपका यह शरीर मन बुद्धि का संघात है, उसमें जागृत अवस्था उत्पन्न तो हुई ना, किसने की उत्पन्न? वो परमात्मा मेरे भीतर होगा तो ही उत्पन्न हो सकेगा ना। जागृत अवस्था की उत्पत्ति कौन कर रहा है? सर्वज्ञ कौन है? परमात्मा। तो जागृत अवस्था की जब वो उत्पत्ति कर रहा है तो मेरे भीतर वो होगा तो ही जागृत हम जागेंगे ना। तो जागृत अवस्था की उत्पत्ति हुई पर हम जागते ही रहते हैं क्या? नहीं, जागना होता है, स्थिति बनी रहती है। जागृत अवस्था का लय होता है, नाश होता है, कहाँ हुआ? मेरे ही भीतर हुआ। तो प्रभव और अप्यय जो है वो मेरे ही भीतर ये अवस्थाओं का चल रहा है, इसीलिए वो कुछ जागना, कुछ उत्पन्न होना मेरे भीतर, कुछ रहना और कुछ चला जाना, ये परमात्मा है। तो मेरे भीतर भी वो परमात्मा रहे हैं। बाहर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है, मेरी भी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय जो हो रही है वो निश्चित बाहर करने वाला और भीतर जो करने वाला एक ही हो सकता है, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण परमात्मा ही है, उसके अलावा कोई भी ये शक्ति नहीं रखता है, ऐसा उपनिषदों ने कहा है। एतस्माद् आत्मनः आकाशस्तम्भुत आकाशाद् वायु, वायो अग्नि ही, और अंत में पृथिव्याम औषधयः औषधिव्योन्नम अन्नात् पुरुषः। ये यहाँ तक की जो उत्पत्ति है वो परमात्मा की ही है। तो पुरुष में जो भी उत्पत्ति स्थिति और लय है, पुरुष तक उसे ईश्वर कहते हैं, पुरुष के भीतर ये शरीर के भीतर उत्पत्ति स्थिति लय होने लगी ना, उसे नाम दे दिया प्रत्यगात्मा, उसे नाम दे दिया ये अहम, आत्मा का नाम उसे दे दिया है। इसीलिए कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है जो उत्पत्ति स्थिति लय तेरे भीतर कर रहा है, तीनों अवस्थाओं में जो चौथा तुरीय है, ये अयम जो है, ये आत्मा जो है, ये भी ये ब्रह्म है। अब मांडुक्य उपनिषद में इतना कहने के बाद लगता है कि कोई ऐसा परमात्मा, कोई ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो मेरे भीतर है, तो अब उसे अन्वेषण करना तो आपने शुरू कर दिया कि बंद करके आप अन्वेषण, सूक्ष्म अन्वेषण शुरू करेंगे। पर यहां उपनिषद की जो अन्वेषण जो है उसकी भी मर्यादा बताते हैं। कैसे कि भाई अन्वेषण, हमने आपको सीक्रेट तो बता दिया कि ये अवस्थाओं में से कुछ, ये बिना अवस्था का जो भी कोई लगेगा ना वो परमात्मा है,